योएल की पुस्तक और लाओदीकियाई सातवें दिन एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 9।
संख्या 9।
योएल की पुस्तक की इस भूमिका में मैं अब उस चरण पर हूँ जहाँ पहले 8 लेखों के कुछ बिंदुओं का संक्षेप में सार प्रस्तुत करूँ और यह स्पष्ट करूँ कि अब जब हम योएल की पुस्तक का अधिक प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमें उससे क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, और फिर स्वाभाविक रूप से इसका दानियल 11:11 में वर्णित राफिया और पैनियम की लड़ाइयों से क्या संबंध है।
हमने दाग की बारी ओं के गीत पर विशेष बल दिया है क्योंकि भविष्य सूचक रूप से अनुभव को गीत द्वारा दर्शाया गया है। 144,000 की विशेषताओं में से एक ये है कि वे मूसा और मेमने का गीत गाते हैं। ये बस यशायाह के दाग की बारी के गीत का प्रतिनिधित्व करने का यूहन्ना का तरीका है। हर प्रमुख नबी अपनी पुस्तकों की शुरुआत इसराइल के विद्रोह के विरुद्ध भर्त्सना से करते हैं, या यूं कहें कि हर प्रमुख नबी पहले दाग की बारी का गीत ही गाते हैं। मैं ये मानता हूं कि योएल के पहले अध्याय में दाग की बारी का गीत दाग की बारी के गीत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों में से एक है। मैं नहीं कह सकता कि मैं सही हूं या नहीं, पर इस दृढ़ विश्वास का कारण ये है कि योएल की पुस्तक में प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत भविष्य सूचक संबंध एक कुंजी जैसे प्रतीत होते हैं, या शायद कई तीलियों की धुरी जैसे। योएल की गवाही न केवल अन्य समानांतर रेखाओं से जुड़ती है बल्कि ये एक संदर्भ बिंदु भी स्थापित करती हुई प्रतीत होती है, विशेषकर पहले अध्याय में दाग की बारी के नष्ट होने के प्रतीकवाद के माध्यम से, और अगले 2 अध्यायों में संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा की परीक्षा का समय तथा समस्त विश्व के लिए पशु की प्रतिमा की परीक्षा का समय दोनों की पहचान के माध्यम से। और ये सब दाग की बारी के संदर्भ में ही स्थित है, और यदि उसे वर्षा न मिले तो दाग की बारी जीवंत दाग की बारी नहीं होती।
हमने उस भविष्यवाणी के काल पर भी जोर दिया है जो कब तक के प्रतीक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। मुझे यह आवश्यक लगा कि हम कब तक से संबंधित इस पहले से स्थापित सिद्धांत को याद करें ताकि उस शीर्ष पत्थर पर जोर दिया जा सके जो था और जो नींव तथा कोने का पत्थर भी है। वर्तमान में प्रगति पर मिडनाइट क्राई संदेश का अंतिम पूर्ण विकास ही शीर्ष पत्थर है। उन नींवों पर आधारित वो शीर्ष पत्थर मिलर के रत्न है जो शुरुआत की तुलना में 10 गुना अधिक चमक रहे हैं।
परमेश्वर के एह अद्भुत कार्यों के आधार पर शीर्ष शिला समय है जब उसके लोग लाओदीकीय अनुभव से फिलाडेल्फियाई अनुभव में प्रवेश करते हैं, जब वे 8वां बनते हैं जो 7 में से है, और साथ ही जब वे कलीसिया के संघर्षरत रूप से कलीसिया के विजयी रूप में परिवर्तित होते हैं। यही परिवर्तन शीर्ष शिला है। ये परिवर्तन तब संपन्न होता है जब परमेश्वर के लोग शीर्ष शिला का संदेश सुनते और देखते हैं और वो उनकी दृष्टि में अद्भुत होता है। शीर्ष शिला का संदेश चरम है क्योंकि वो सभी सांकेतिक शीर्ष शिला सत्यों को एक साथ एकत्र करता है। 7 समय का संदेश मिलर की आधारशिला था और वही मिलर पंथियों की शीर्ष शिला होना था। पेंटेकोस्ट के काल का शीर्ष शिला था, जैसे कि मध्य रात्रि की पुकार पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के मिलर पंथी आंदोलन की शीर्ष शिला थी।
जिस 46 वर्षीय अवधि का चरम या शिखर पत्थर जिसमें मसीह ने पहले और दूसरे स्वर्गदूतों का मिलरवादी मंदिर बनाया, वही शिखर पत्थर 144,000 के मंदिर का निर्माण करने में मसीह के कार्य के लिए आधारशिला बनने वाला था। वो आधारशिला 1844 में इस रूप में स्थापित की गई कि वो स्वर्ग के पथ को आलोकित करने वाला प्रकाश हो, और इसी कारण जगत के अंत में परमेश्वर की प्रजा को विश्राम पाने के लिए पुराने मार्गों पर लौटना है। जब वे मिलरवादियों के प्रारंभिक इतिहास में लौटते हैं तो वे पाते हैं कि आधी रात की पुकार का संदेश उस आधारभूत इतिहास का चरम था। आधी रात की पुकार पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का एक प्रकटीकरण थी। जब कोई आत्मा पुराने मार्गों पर लौटती है और वो उज्ज्वल प्रकाश पाती है जो मार्ग के आरंभ या आधार बिंदु पर स्थापित किया गया था, तब उसे आधी रात की पुकार मिलती है जिसे यिर्मयाह विश्राम के रूप में पहचानता है।
मार्ग के आरंभ में उनके पीछे एक उज्ज्वल प्रकाश स्थापित था जिसके विषय में एक स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि वो मध्यरात्रि की पुकार है। ये प्रकाश समस्त मार्ग पर चमकता था और उनके पांवों के लिए ज्योति देता था, ताकि वे ठोकर न खाएं। यदि वे अपनी आंखें यीशु पर, जो उनके बिल्कुल सामने था और उन्हें नगर की ओर ले जा रहा था, टिकाए रखते तो वे सुरक्षित रहते। परंतु जल्द ही कुछ थक गए और कहने लगे कि नगर बहुत दूर है और वे अपेक्षा करते थे कि वे इससे पहले ही उसमें प्रवेश कर चुके होते। तब यीशु अपनी महिमामय दाहिनी भुजा उठाकर उन्हें प्रोत्साहित करता और उसकी भुजा से एक प्रकाश निकलता जो एडवेंट दल के ऊपर लहराता और वे पुकार उठते, हल्लेलुया। कुछ अन्य ने उतावलेपन में अपने पीछे की ज्योति का इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इतनी दूर तक ले जाने वाला परमेश्वर नहीं था। उनके पीछे की ज्योति बुझ गई, उनके पांव पूर्ण अंधकार में पड़ गए और वे ठोकर खाकर लक्ष्य और यीशु दोनों को दृष्टि से खो बैठे और मार्ग से गिरकर नीचे स्थित अंधकारमय और दुष्ट संसार में जा पड़े। एलन जी वाइट के ईसाई अनुभव और शिक्षाएं 57।
मिलराइट इतिहास की परिणति 144,000 के इतिहास की नेव का पत्थर है। 1758 में तीन स्वर्गदूतों के संदेशों की शुरुआत से लेकर रविवार के कानून के समय पवित्र स्थान की शुद्धि की पूर्ति में विजयी कलीसिया के उठाए जाने तक वो मार्ग मध्यरात्रि की पुकार के संदेश से आलोकित रहता है, क्योंकि ये दृष्टांत एडवेंटवाद के विषय में है और ये बताता है कि रविवार के कानून के संकट के दौरान, जब मानव जाति के लिए अनुग्रह का समय समाप्त होता है, तब परमेश्वर कैसे ऐसे लोगों को उठाता है जो उसके स्वभाव को पूर्णतया प्रतिबिंबित करें। मार्ग पर यीशु आगे आगे चल रहे हैं और वे अपने महिमामय दाहिने हाथ को उठाकर मार्ग को निरंतर प्रकाशित करते रहते हैं। इसलिए मार्ग के आरंभ में एक तेज प्रकाश है और एक तेज प्रकाश मार्ग के अंत की ओर ले जाता है। अल्फा और ओमेगा के रूप में यीशु आरंभ से ही अंत को प्रकट करते हैं। अतः मार्ग के दोनों सिरों पर जो प्रकाश है वो मध्यरात्रि की पुकार का संदेश है।
पहला स्वर्गदूत 1798 में आया और उसने ये घोषणा की कि उसके न्याय की घड़ी आ गई है, कहते हुए उसके न्याय की घड़ी आ गई है। न्याय की घड़ी 1798 में आई और जब वो प्रारंभ हुई तो मसीह और उसकी नई दुल्हन फिलाडेल्फियाई मिलिरवादी एडवेंटवाद के बीच विवाह आरंभ हुआ। मसीह का विवाह 22 अक्टूबर 1844 को होना था और 1798 से 1844 तक दुल्हन की तैयारी हुई। दुल्हन फिलाडेल्फियाई मिलिर थी, क्योंकि मसीह की दुल्हन पर कोई दोषारोपण नहीं था, क्योंकि उसने स्वयं को तैयार किया था, वह शुद्ध थी। न्याय की घोषणा वही विवाह की घोषणा है जो 1798 में दी गई थी और 1844 में अंत में आ पहुंची।
मिलराइट ऑन डूलन के लिए आधारभूत प्रकाश और शिखर का प्रकाश विवाह की घोषणा करने वाला संदेश था, मध्यरात्रि की पुकार का संदेश। मध्यरात्रि की पुकार पहले और दूसरे स्वर्ग दूतों के इतिहास तथा मिलराइट इतिहास की आधारशिला भी थी और शिखर पत्थर भी। और मिलराइट इतिहास का शिखर पत्थर 144,000 के इतिहास की आधारशिला भी है और शिखर पत्थर भी। मंदिर का निर्माण तब पूरा होता है जब शिखर पत्थर रखा जाता है और उस अंतिम अद्भुत पत्थर को रखने का कार्य जुलाई 2023 में शुरू हुआ।
ऐसी विभिन्न भविष्यवाणी संबंधी पूर्तियां हैं जो मिलकर शीश पत्थर बनेंगी, पर शीश पत्थर किसी संदेश के चरम बिंदु का भी प्रतिनिधित्व करता है। पेंटेकोस्ट पेंटेकोस्टी गाल के संदेश का शीश पत्थर था, जैसे 1856 में हिराम एडसन की कलम से आया सात समय का प्रकाश मिलर के संदेश का अभिप्रेत शीश पत्थर था, क्योंकि मिलर द्वारा खोजी गई पहली आधारभूत सच्चाई सात समय ही थी। 1856 में शीश पत्थर की सच्चाई के नए प्रकाश को अस्वीकार करना लाओदीकिया की मरुभूमि में मरना चुनने के समान था, जैसा प्राचीन इज़राइल ने 40 वर्षों तक किया था। ये जुलाई 2023 को 1856 के रूप में पहचानता है मिलराइट इतिहास में फिलाडेल्फिया से लाओदीकिया की ओर मोर बिंदु के रूप में और 144,000 के इतिहास में लाओदीकिया से फिलाडेल्फिया की ओर उलटफेर के रूप में।
मसीह ने 1844 में किसी अशुद्ध स्त्री से विवाह नहीं किया क्योंकि वो फिलाडेल्फिया की थी और वो रविवार के कानून के समय फिलाडेल्फिया से एक दुल्हन से विवाह करेगा, पर पहले उसे स्वयं को तैयार करना होगा। क्या आप तैयार है?
हे छोटे झुंड, मत डरो, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य देना अच्छा लगा है। लूका 12:33।
30 अक्टूबर 1884 को प्रभु ने उस दुल्हन से विवाह किया जिसे उसने उसके साथ तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास में और जो कुछ तीसरा स्वर्गदूत दर्शाता है उसमें चलने के लिए तैयार किया था। परंतु 1863 तक तीसरे स्वर्गदूत का इतिहास लाओदीकिया के मरुस्थल की ओर भटका दिया गया। 1884 से 1863 तक का इतिहास तीसरे स्वर्गदूत की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार ये 1,44,000 की मुहरबंदी के समय में मूर्ख कुमारियों का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुमारियां गेहूं और खरपतवार के समान हैं, जिन्हें स्वर्गदूतों द्वारा निरूपित संदेशों के माध्यम से अलग किया जा रहा है, क्योंकि अलग करने का कार्य स्वर्गदूत ही करते हैं।
तब मैंने तीसरे स्वर्गदूत को देखा। मेरे साथ रहने वाले स्वर्गदूत ने कहा, भयावह है उसका कार्य, भयानक है उसका मिशन। वही स्वर्गदूत है जो गेहूं को जंगली घास से अलग करेगा और स्वर्गीय कोठार के लिए गेहूं पर मुहर लगाएगा अथवा उसे बांध देगा। इन बातों को हमारे पूरे मन और पूरे ध्यान पर अधिकार कर लेना चाहिए। अर्ली राइटिंग्स, 19वां नहरी।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के 3 स्वर्गदूतों के संदेश अंतिम वर्षा का वो संदेश है जो 2 वर्गों को विभाजित करता है और बांधता है।
कलीसिया के अनुभव से संबंधित अत्यंत गहन और रोमचाकारी दृश्यों का दर्शन योहन को कराया गया। उसने परमेश्वर की प्रजा की स्थिति, उनके संकट, संघर्ष और अंततः उनकी मुक्ति देखी। वह उन अंतिम संदेशों को लिखता है जो पृथ्वी की फसल को परिपक्व करेंगे, या तो स्वर्गीय कोठार के लिए फूलों के रूप में या विनाश की अग्नि के लिए लकड़ी के गठरों के रूप में। उसके समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रकट किए गए, विशेषकर अंतिम कलीसिया के लिए, ताकि जो लोग भ्रांति से सत्य की ओर मुड़े वे अपने सामने आने वाले संकटों और संघर्षों के विषय में शिक्षित किए जा सकें। पृथ्वी पर क्या आने वाला है इस विषय में किसी को भी अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं है। महान संघर्ष, तप 43।
यही सत्य के वचन है जो इस पीढ़ी में फसल को पकाने वाले समापन संदेश हैं और जो दोनों वर्गों को अलग करते हैं। वो कार्य मिलर के स्वप्न के धूल ब्रश वाले व्यक्ति का भी कार्य है,
जिसका सूप उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान को भली भांति शुद्ध करेगा और अपने गेहूं को कोठार में इकट्ठा करेगा। मत्ती 3:12। ये शुद्ध करने के समयों में से एक था। सत्य के वचनों के द्वारा भूसी को गेहूं से अलग किया जा रहा था, क्योंकि वे ताड़ना ग्रहण करने के लिए अत्यंत अभिमानी और आत्मधर्मी थे और दीनता का जीवन स्वीकार करने के लिए संसार प्रेम में डूबे हुए थे। इसलिए बहुतों ने यीशु से मुंह मोड़ लिया। बहुत से लोग आज भी वही कर रहे हैं। आज आत्माओं की परीक्षा वैसी ही हो रही है जैसी कफरनहूम के सभागृह में उन चेलों की हुई थी। जब सत्य हृदय पर लागू किया जाता है तब वे देखते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। वे अपने भीतर पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता देखते हैं, परंतु वे उस आत्मत्यागमय कार्य को हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए जब उनके पाप प्रकट किए जाते हैं तो वे क्रोधित हो उठते हैं। वे ठोकर खाकर चले जाते हैं, जैसे उन चेलों ने यीशु को छोड़ दिया था, बड़बड़ाते हुए, ये बात तो कठिन है, इसे कौन सुन सकता है। द डिजायर ऑफ एजेस था सच पाखच के समय।
एक तो 100 की महान निराशा से शुरू होकर एक तो 7:63 तक के मार्ग चिन्ह और घटनाक्रम 9 नवंबर से लेकर रविवार के कानून तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पूछते हैं, एक तो 9 नवंबर क्यों है? बहन व्हाइट की रचनाएं स्पष्ट करती हैं कि तीसरा स्वर्गदूत 22 अक्टूबर 1844 को आया, परंतु 1838 में भी आया, जो 9 बहरीना प्रतीक है। इससे भी बढ़कर सभी भविष्यद्वक्ता
नौ बहरीना से लेकर रविवार के कानून तक की उसी इतिहासावधि को विशेष रूप से चिन्हित करते हैं। इसलिए ये दो या तीन की नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के प्रत्येक साक्षी की संयुक्त गवाही है कि नौ बहरीना से रविवार के कानून तक का समय वो अवधि है जिसमें प्रत्येक दर्शन का प्रभाव पूरा होता है।
तीसरे स्वर्गदूत के आगमन और समापन का इतिहास 1804 से 1863 तक था और वो नौ यालर से लेकर रविवार के कानून तक परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। उस इतिहास का प्रतिनिधित्व 1840 से 1804 की रेखा द्वारा भी किया जाता है और उस रेखा में 1840 अल्फा है और 1804 ओमेगा है। 1804 से 1863 की रेखा में 1804 अल्फा है और 1863 ओमेगा है। 1804 अल्फा और ओमेगा दोनों है।
क्रूज 1844 से मेल खाता है और अल्फा और ओमेगा ने क्रूज पर अपना रक्त बहाया। अक्टूबर 1914 से हम पाते हैं कि प्रकाशित वाक्य की अध्याय 10 वो इतिहास प्रस्तुत करता है जो अक्टूबर 1940 में यूहन्ना द्वारा उस छोटी पुस्तक को खाने से शुरू होता है और फिर अक्टूबर 1944 में उसके पेट में निराशा होती है। खाना शुरुआत है, पेट अंत को चिह्नित करता है। अध्याय 10 की अंतिम आयत उस इतिहास को दर्शाती है जो 144,000 के इतिहास में दोहराया जाता है।
और मैंने स्वर्ग दूत के हाथ से वो छोटी पुस्तक ली और उसे खा लिया और वो मेरे मुख में मधु के समान मीठी थी, परंतु जैसे ही मैंने उसे खा लिया मेरा पेट कड़वा हो गया। और उसने मुझसे कहा, तुझे फिर बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के सामने भविष्यवाणी करनी होगी। प्रकाशित वाक्य 10:10-11।
प्रकाशित वाक्य का 10वां अध्याय और हबक्कूक का 2रा अध्याय 1840 से 1844 की भविष्यवाणी अवधि की गवाही देते हैं। 1844 से 1863 का इतिहास निराशा के एक मार्ग चिन्ह से शुरू होता है जिसके बाद बिखराव आता है और फिर एकत्रीकरण। उसी अवधि में हबक्कूक की दो तालिकाओं का भविष्यवाणी कदम तब समाप्त होता है जब दूसरी तालिका 1859 को मुद्रित हुई और 1850 में विदेश में प्रकाशित की गई। हबक्कूक की तालिकाओं की अवधि मई 1845 से शुरू हुई जब 1843 का चार्ट प्रकाशित हुआ और भविष्यवाणी अवधि वही समाप्त हुई जहां वो आरंभ हुई थी, अर्थात हबक्कूक की दो तालिकाओं में से एक के प्रकाशन के साथ। 1843 का चार्ट अल्फा है और 1850 का चार्ट ओमेगा है।
1856 में हायरम एडसन ने लेखों की एक श्रृंखला लिखी जिसने विलियम मिलर की 7 बार संबंधी समझ को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया। एडसन का कार्य मिलर के कार्य का ओमेगा था जिसने मिलर की आधारभूत सच्चाई को शीर्ष पत्थर के स्थान पर पहुंचा दिया जिसका उद्देश्य परमेश्वर की प्रजा को सशक्त बनाना था। 7 बार पर मिलर का प्रकाश अल्फा था और 7 बार पर एडसन का प्रकाश ओमेगा था।
1877 में वो आंदोलन उस कलीसिया में बदल गया जो अंततः अपने ही मध्य से एक आंदोलन उत्पन्न करेगी, ठीक वैसे ही जैसे मिलराइट्स प्रोटेस्टेंटों से निकले थे, जैसे शिष्य यहूदी धर्म से निकलकर ईसाई धर्म में आए थे और जैसे यहोशू और कालेब उसी पुरानी वाचा की प्रजा में से थे जो जंगल में मरने के लिए नियत थी।
उसी इतिहास में 1850 से 1863 पृथ्वी के पशु का रिपब्लिकन सीन एक समानांतर संघर्ष से गुजर रहा है जो अंततः गृह युद्ध के रूप में फूट पड़ता है, जिसके बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि 1863 में लिंकन की दासक मुक्ति घोषणा के साथ वो अपने मध्य बिंदु पर पहुंचा। लिंकन पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उस समय तक के इतिहास में सबसे खराब डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ ली। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। ये सभी भविष्य सूचक विशेषताएं और अन्य भी अंतिम रिपब्लिकन राष्ट्रपति के साथ दोहराई जाती हैं।
100 वर्षी तक की अवधि में एक बिखराव और एक एकत्रीकरण शामिल था। 100 वर्षी तक रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 100 वर्षी तक जो विखराव हुआ वही 100 वर्षी तक का एकमात्र विखराव है जब लाओदिकिया के सेवेंथ डे
एडवेंटिस्ट लाओदिकिया की मरुभूमि में बिखेर दिए गए, 100 फरसी तक का एक विखराव उत्पन्न किया और 100 फरसी तक ने भी एक विखराव उत्पन्न किया। इस प्रकार ये इस तथ्य की गवाही देता है कि ये इतिहास एक पहचाना हुआ भविष्य सूचक प्रतीक है, क्योंकि ये 100 फरसी तक अल्फा विखराव से शुरू होता है और 100 फरसी तक बराग्रह विखराव पर समाप्त होता है। पहला विखराव 18 जुलाई 2020 को आया और अंतिम ओमेगा विखराव रविवार के कानून के समय पूरा होता है।
वह समय आ रहा है जब हम अलग किए जाएंगे और तितर बितर हो जाएंगे, और हम में से प्रत्येक को अपने जैसी अनमोल आस्था वाले लोगों के साथ संगति का सौभाग्य पाए बिना ही खड़ा होना पड़ेगा। और यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ ना हो और तुम्हें ये ना पता हो कि वही तुम्हारा नेतृत्व कर रहा है और तुम्हें मार्ग दिखा रहा है, तो तुम कैसे डटे रहोगे? रिव्यू एंड हेरल्ड, 25 मार्च 1890।
केवल इतना पर्याप्त नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि वो तुम्हारा नेतृत्व और मार्गदर्शन कर रहा है। ये तथ्य भविष्यवाणी का विषय है जो जब तुम प्रभु को जानोगे पर आधारित विभिन्न वाक्यांशों द्वारा व्यक्त किया गया है।
और तुम बहुतायत से खाओगे और तृप्त हो जाओगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे साथ अद्भुत काम किए हैं, और मेरी प्रजा कभी लज्जित नहीं होगी। और तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और मेरे सिवा कोई नहीं, और मेरी प्रजा कभी लज्जित नहीं होगी। तब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो सियोन मेरे पवित्र पर्वत में वास करता हूँ। तब यरूशलेम पवित्र होगी और फिर कोई परदेसी उसके भीतर से होकर नहीं गुजरेगा। योएल 2:26-27, 3:17।
जब यरूशलेम पवित्र होती है तब वो विजयी कलीसिया होती है, क्योंकि संघर्षरत कलीसिया को ऐसी कलीसिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गेहूं और खरपतवार से बनी होती है। और जब कोई परदेसी होकर नहीं गुजरेगा यरूशलेम से, अब और तब परमेश्वर के लोग जानेंगे कि वो अगुवाई और मार्गदर्शन कर रहा है। वे जानते हैं, क्योंकि वे वही है जिन्होंने 7 बार की प्रार्थना पूरी की है, जिसमें ये स्वीकार करना शामिल है कि लौदिकियाई होने के नाते परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई नहीं कर रहा था, परंतु जब तुम फिलादेल्फियाई बन जाओगे तब तुम जानोगे कि वो अगुवाई और मार्गदर्शन कर रहा है और कि परमेश्वर इज़राइल के बीच में है। 19 अप्रैल का अल्फा विखराव निराशा और 22 अक्टूबर का ओमेगा विखराव निराशा 22 अक्टूबर की महान निराशा के बाद हुए पहले आधिकारिक प्रकाशन से चिन्हित होते हैं। प्रकाशन मिलराइट इतिहास और संयुक्त राज्य अमेरिका के भविष्य सूचक इतिहास में एक चिन्ह है, इसलिए 1844 के बाद आधिकारिक रूप से हुआ पहला प्रकाशन उस इतिहास का एक मार्ग चिन्ह है, और वो मार्ग चिन्ह एक विखराव की पहचान कराता है।
100 हथेरे के विदेशों में तितर चलने वाले बचे हुए जनचल ला हुए।
छोटे झुंड के लिए एक संदेश। निम्नलिखित लेख द डे डॉन के लिए लिखे गए थे, जिसे कैनन जायगवा न्यूयॉर्क में ओ.आर.एल. क्रोजियर द्वारा प्रकाशित किया गया था, परंतु चूंकि वो पत्र अब प्रकाशित नहीं होता और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो फिर प्रकाशित होगा या नहीं, इसलिए मेन में हम में से कुछ लोगों ने ये उचित समझा कि इन्हें इस रूप में प्रस्तुत किया जाए। मैं छोटे झुंड का ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो बहुत शीघ्र इस पृथ्वी पर घटित होने वाली है। पाठक ने यह देखा होगा कि श्रीमती ई.जी. वाइट की कलम से लिखे गए 3 संदेश ए वर्ड टू द लिटिल फ्लॉक में सम्मिलित थे। श्रीमती वाइट का दूसरा संदेश, जो पृष्ठ 14-60 पर मिलता है, टू द रेमनेंट स्कैटर्ड अब्रॉड शीर्षक के अंतर्गत उनके प्रथम दर्शन का विवरण है। ये 20 दिसंबर 1845 को इनोक जैकब्स को एक निजी पत्र के रूप में लिखा गया था और 24 जनवरी 1846 के द डे स्टार में प्राप्तकर्ता द्वारा पहली बार प्रकाशित किया गया था। फिर 6 अप्रैल 1846 को जेम्स वाइट और H.S. गर्नी द्वारा इसे ब्रॉडसाइड रूप में पुनर्मुद्रित किया गया। अ वर्ड टू द लिटिल फ्लॉक में, जैसा ये कथन प्रस्तुत है, कुछ मामूली संपादकीय परिवर्तनों और जोड़े गए शास्त्र संदर्भों को छोड़कर ये दर्शन के उस पूर्ण विवरण के समान ही है जैसा कि पहली बार मुद्रित किया गया था। जेम्स वाइट, अ वर्ड टू द लिटिल फ्लॉक, 25।
एक तासो तारे फारी, एक स्वर्गदूत के आगमन
और एक निराशा को चिह्नित करता है। एक तासो तारई फरी में पहला दर्शन लिखा गया और एक तासो तारई फरी प्रकाशित किया गया। पहला दर्शन सारे संसार में बिखरे हुए अवशिष्ट के लिए है। मुझे संदेह है कि जब उस अविवाहित किशोरी भविष्यवक्त्री ने अपना पहला दर्शन लिखकर उतारा, तब उसे ये पता था कि अवशिष्ट की एक भविष्य सूचक विशेषता ये है कि भविष्यवाणी की अनिवार्यता के कारण अवशिष्ट को सारे संसार में बिखरा होना पड़ेगा, जो 144,000 की विशेषताओं में से एक है। 1144 में वाइट्स का विवाह हुआ, जिससे एलन का उपनाम बदलकर वाइट हो गया। उसी वर्ष वाइट्स ने सातवें दिन का शब्द मानना शुरू किया। एक तासो तारे फरी में वाचा के अंतिम रूप से संपन्न होने को चिह्नित किया गया। एक तासो तारे फरी में प्रारंभ हुआ भविष्य सूचक विवाह एक तासो तारे फरी में संपन्न हुआ और एक तासो तारे फरीम से वह आधिकारिक प्रकाशन छापा गया, थे रिडाक से भेजा गया, मई 1850।
प्रिय पाठक, इस समीक्षा में मेरा उद्देश्य पवित्र सत्य के प्रकाश में त्रुटि को उजागर करना रहा है। इस लघु कृति को बिखरी हुई मंडली के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैंने इस संबंध में उनके प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया है और परमेश्वर अपनी आशीष दें, आमीन। जेम्स वाइट, सातवें दिन का सप्ते रद्द नहीं किया गया तो।
जेम्स वाइट का प्रकाशन ये बताता है कि उनका श्रोता वर्ग अभी भी एक बिखरा हुआ झुंड था और साथ ही ये सातवें दिन के सप्त की रक्षा भी है। मिलर्डवादी एडवेंटवाद में सप्त और तीसरे स्वर्गदूत की जो समझ थी उसके संदर्भ में ये तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का आरंभिक रूप था। ये उसी वर्ष प्रकाशित हुआ जिस वर्ष 1850 का चार्ट प्रकाशित हुआ और दोनों मिलकर आगामी रविवार कानून के संकट के लिए प्रभु की सेना के खड़ा किए जाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। यीशु हमेशा अंत को आरंभ से दर्शाते हैं और 1844 में जिन्होंने 18 तरह काल इनके चार्ट का उपयोग करके संदेश प्रस्तुत किया वे उन लोगों का प्रतीतिक है जो 1850 के चार्ट का उपयोग करके संदेश प्रस्तुत करने वाले थे। हबक्कूक की दो पट्टिकाओं के कालखंड की शुरुआत में लोग हबक्कूक के पट्टिका के साथ मिलकर उस समय का संदेश सुना रहे थे और 1850 में जेम्स वाइट 1850 के चार्ट के साथ तीसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। यह चार्ट 1849 के समय में भाई निकोल्स द्वारा बनाया गया था। उसी अवधि में जेम्स और एलन वाइट भाई निकोल्स के साथ रह रहे थे। जेम्स वाइट 1850 के चार्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हुए थे और उसी वर्ष उन्होंने तीसरे स्वर्गदूत का संदेश घोषित करना आरंभ किया।
इतनी सितंबर 1850 प्रभु ने मुझे दिखाया कि उन्होंने अपनी प्रजा के शेष बचे लोगों को वापस लाने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया है और कि इस एकत्रीकरण के समय प्रयासों को दोगुना किया जाना चाहिए। विखराव के समय इज़राइल आहत और छिन्न भिन्न हुआ, परंतु अब एकत्रीकरण के समय परमेश्वर अपनी प्रजा को चंगा करेगा और उनके घावों को बांधेगा। विखराव में सत्य का प्रसार करने के लिए किए गए प्रयासों का बहुत कम प्रभाव हुआ, बहुत कम या कुछ भी नहीं हो सका। परंतु एकत्रीकरण में जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बटोरने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, तब सत्य के प्रसार के प्रयास अपने अभिप्रेत परिणाम देंगे। सबको इस कार्य में एकजुट और उत्साही होना चाहिए। मैंने देखा कि अब जब हम एकत्र हो रहे हैं तब हमें मार्गदर्शन देने के लिए उदाहरण के रूप में विखराव का हवाला देना किसी के लिए भी लज्जाजनक है, क्योंकि यदि परमेश्वर अब हमारे लिए उससे अधिक न करे जितना उसने तब किया था तो इज़राइल कभी भी एकत्र न होता। जैसे सत्य का उपदेश देना आवश्यक है, वैसे ही उसे किसी पत्र में प्रकाशित करना भी आवश्यक है। रिव्यू एंड हेरल्ड, 1 नवंबर 1850। पृष्ठ छापन पर उल्लेखित ये दर्शन कि प्रभु ने अपने लोगों के अवशेष को पुनः प्राप्त करने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया था, केवल मसीह की प्रतीक्षा करने वालों के बीच कभी विद्यमान एकता और सामर्थ्य की ओर और इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि उसने अपने लोगों को फिर से एक करना और उठाना आरंभ कर दिया था। अर्ली राइटिंग्स आथेसिक
Early writings में Sister White, Review and Herald के एक अंश पर टिप्पणी करती हैं, जो इस बात से संबंधित है कि उन्होंने भविष्यद्वक्ता यशाया के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा,
प्रभु ने मुझे दिखाया कि उसने अपनी प्रजा के बचे हुए को वापस लाने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया था। प्रभु ने 1850 में अपना हाथ बढ़ाया जब 22 अक्टूबर 1844 को उसने उन लोगों को परम पवित्र स्थान में एकत्र किया। तब ये सच्चा सत ईसा पूर्व से 22 अक्टूबर 1844 तक चले बिखराव के समापन पर था। शाब्दिक महिमामय भूमि में निवास करने वाला शाब्दिक यहूदा सच्चा सत ईसा पूर्व में लैव्य व्यवस्था 26 के 7:12 के अनुसार 2022 वर्षों के लिए बिखेर दिया गया। इह तौ सत्यहकाक 2022 वर्षों की समाप्ति पर 22 अक्टूबर 1844 को आत्मिक इसराइल को एकत्र किया गया और वे तुरंत ही फिर बिखेर दिए गए। और जब प्रभु ने दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया तब वो बिखराव समाप्त हुआ। वो इस अंश में उन्हें दूसरी बार दो बातों की पूर्ति के लिए इकट्ठा करता है, अपनी प्रजा को बांध देना और अपनी प्रजा को उठाना।
तब मैंने तीसरा स्वर्गदूत देखा। मेरे साथ रहने वाले स्वर्गदूत ने कहा, भयप्रद है उसका वचन, भयानक है उसका कार्य। वो वही स्वर्गदूत है जिसे गेहूं को जंगली घास से छांटकर अलग करना है और स्वर्गीय खलिहान के लिए गेहूं पर मुहर करना या उसे पान देना है। इन बातों में पूरा मन पूरा ध्यान लगना चाहिए। फिर मुझे ये दिखाया गया कि जो ये विश्वास करते हैं कि हम दया का अंतिम संदेश पा रहे हैं, उनके लिए उन लोगों से अलग रहना आवश्यक है जो प्रतिदिन नए नए भ्रम ग्रहण कर रहे हैं या उन्हें आत्मसात कर रहे हैं। मैंने देखा कि न युवा और न वृद्ध किसी को भी भ्रम और अंधकार में पड़े लोगों की सभाओं में जाना नहीं चाहिए। स्वर्गदूत ने कहा, मन निष्फल बातों पर ठहना छोड़ दे। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 5, 495।
जो 1850 में आरंभ हुआ, दूसरा एकत्रीकरण परमेश्वर के लोगों की मुहरबंदी बंधन का प्रतीक था, क्योंकि उन्हें एक झंडे के रूप में उठाया जाता है। 1850 ये संकेत करता है कि प्रभु 144,000 को कब इकट्ठा करता है। भविष्यवाणी की अनिवार्यता के अनुसार इकट्ठा किए जाने से पहले उनका बिखर जाना आवश्यक था। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य 11:11 के 3.5 दिन 1860 का प्रतीक है, जो 62 दिनों का आधा है, और ये 18 जुलाई 2020 के बाद हुए बिखराव का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य 11:11 उन लोगों के दूसरे एकत्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है जो 144,000 होने वाले हैं, और उस झंडे का भी जो जातियों के सामने उठाया जाता है, जैसा कि यशाया 11:9 नाश की ये वैरत है।
और उस दिन यशाया की एक जड़ होगी जो लोगों के लिए ध्वज के समान खड़ी होगी, अन्य जातियां उसकी खोज करेंगी और उसका विश्राम महिमामय होगा। और उस दिन ऐसा होगा कि प्रभु अपने लोगों के उस अवशेष को जो बचा रह जाएगा वापस लाने के लिए फिर दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाएगा, अश्शूर से और मिस्र से और पत्रोस से और कूश से और एलाम से और शिनार से और हमात से और समुद्र के द्वीपों से, और वो जातियों के लिए एक निशान खड़ा करेगा और इसराइल के निकाले हुओं को इकट्ठा करेगा और पृथ्वी के चारों कोनों से यहूदा के छितराए हुओं को बटोर लेगा। यशाया 11:10-11:12।
150 फीदी में प्रभु ने उन लोगों को एकत्र करने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया जो हबगूक की दो पट्टिकाओं द्वारा दर्शाई गई आधी रात की पुकार के संदेश के साथ मिलकर तीसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रस्तुत कर रहे थे। जुलाई 2023 में प्रभु ने उन लोगों को एकत्र करने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया जो हबगूक की दो पट्टिकाओं द्वारा दर्शाई गई आधी रात की पुकार के संदेश के साथ मिलकर तीसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रस्तुत कर रहे थे। 150 और जुलाई 2023 दोनों यशाया अध्याय 11 के पद 11 में जैसा कहा गया है, अपने लोगों के बचे हुए के एकत्र किए जाने की पहचान करते हैं। पद 11 पद 10 और 12 के बीच स्थित है और वे दोनों पद संसार के लिए ध्वज के उठाए जाने को दर्शाते हैं। तीनों पद ध्वज की पहचान कराते हैं, हालांकि बीच वाला पद उन्हें शेष बचे हुए के रूप में पहचानता है। वहां उन शेष लोगों को दूसरी बार इकट्ठा किया जाता है और जिन गोत्रों से उन्हें इकट्ठा किया जाता है उनकी संख्या 8 है। 8 न केवल उन लोगों का प्रतीक है जो नूह के जहाज में मृत्यु देखे बिना
पुराने संसार से नए संसार में गए, बल्कि आठ उन लोगों का भी प्रतीक है जो सात की आठवीं कलीसिया कहलाते हैं। प्रकाशित वाक्य 11:3-11 के दो गवाह वे हैं जिन्हें पुनर्जीवित किया गया है। आठ संख्या पुनरुत्थान का प्रतीक है, 144,000 का प्रतीक, बपतिस्मा का प्रतीक और उन लोगों का प्रतीक जो लौदीकिया से फिलाडेल्फिया की ओर बढ़ते हैं और जातियों के लिए यशायाह का ध्वज बन जाते हैं। प्रभु ने 1850 से 1865 के बीच दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया और फिर जुलाई जो 23 में
2023 में सात समय के विषय में वैसा ही नया प्रकाश मिला जैसा 1856 में मिला था।
1856 से 1863 का काल 144,000 का इतिहास दर्शाता है जब प्रभु अपनी शेष प्रजा को एक सेना के रूप में खड़ा करता है।
यशाया 11:1 प्रकाशित वाक्य या 11:1 से पूरी तरह मेल खाता है और प्रकाशित वाक्य 11:1 दानियेल 11:1 से भी पूरी तरह मेल खाता है। यशाया और यूहन्ना एक आंतरिक इतिहास का चित्रण कर रहे हैं और दानियेल एक बाह्य इतिहास का। दानियेल की 11:1 की बाह्य रेखा यूहन्ना की 11:1 की आंतरिक रेखा के समानांतर चलती है और यशाया 11:1 आंतरिक रेखा के उस ध्वज को प्रस्तुत करता है जो परमेश्वर की अन्य भेड़ों को बाह्य रेखा से बाहर आने के लिए बुलाता है। पालमोनी ने इन पदों को एक सुंदर गुच्छे में बांध दिया है जो केवल उसी के द्वारा किया जा सकता था जो सब वस्तुओं का सृष्टि करता है।
हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।
कृत्रिम जानकारी के साथ संकाद,
क्या गणित की दुनिया में संख्या 11 का कोई महत्व है?
हाँ, संख्या एक बार में वास्तविक गणितीय रुचि और महत्व के कई पहलू हैं, सिर्फ एक अभाज्य संख्या होने से परे। यहाँ वे मुख्य बिंदु है जिन्हें गणितीय और गणित प्रेमी अक्सर रेखांकित करते हैं।
11 पांचवां अभाज्य है, सबसे छोटा दो अंकीय अभाज्य और आधार 10 में पालिंड्रोम होने वाला पहला अभाज्य है। 11 सबसे छोटी रेप यूनिट है, दोहराई गई इकाइयों से बनी ऐसी संख्या जो अभाज्य हो। ये एकमात्र दो अंकीय अभाज्य है जिसमें दोनों अंक समान हैं। 11, 33, 33, 34 आदि, ये केवल 11 पर ही लागू होता है। 11 एक मर्सेन अभाज्य घातांक है, एक बोते 11 इरक बार 009909 का दशमलव विस्तार का आवर्ती काल केवल दो का है। लेकिन काल वाई एक्स एक और तरह से भी प्रसिद्ध है। अभाज्यों का क्रम 11, 101, 109, 108, 103333 आदि समांतर श्रेणी में अभाज्यों पर होने वाली चर्चाओं में सामने आता है। क्रम 22 का डायहेड्रो समूह नियमित 11 भुज की सम्मितियां उल्लेखनीय है, क्योंकि 11 वो सबसे छोटा अभाज्य है जिसके लिए डायहेड्रल समूह में समूह सिद्धांत में रुचिकर गैर इबेलियन केंद्र रहित कार्या होती है। सैद्धांतिक भौतिकी स्ट्रिंग सिद्धांत एम सिद्धांत में ब्रह्मांड को अक्सर 11 स्थान काल आयामों में मॉडल किया जाता है और उस क्षेत्र में काम करने वाले भौतिकविद और गणितज्ञ अक्सर 11 की उपस्थिति पर टिप्पणी करते हैं। 11 सम संख्या वाले अंकों के साथ एकमात्र पालिंड्रोमिक अभाज्य है, बाकी सभी जिनमें सम अंक दो से अधिक है 11 से विभाज्य होते हैं और इसलिए संयुक्त है। ये मनोरंजक संख्या सिद्धांत में एक प्रमेय है।
निष्कर्ष, हालांकि 51 को पाए ई या स्वर्ण अनुपात जितना सुपरस्टार दर्जा नहीं मिला है, ये अनेक घटनाओं में सबसे छोटा या पहला उदाहरण बनकर बार बार सामने आता है। पहला रेप यूनिट अभाज्य, एकमात्र सम अंकों वाला पलिंड्रोमिक अभाज्य, कई प्रमाणों और प्रति उदाहरणों में शुरुआती उपस्थिति, एम थ्योरी में 51 आयाम आदि। तो हाँ, गणित जगत 51 को एक महत्वपूर्ण संख्या मानता है।
वचन को प्रेरणा देने वाला ही वचन का सच्चा व्याख्याकार था। मसीह ने अपनी शिक्षाओं को स्पष्ट किया, अपने श्रोताओं का ध्यान प्रकृति के सरल नियमों और उन परिचित वस्तुओं की ओर दिलाकर जिन्हें वे प्रतिदिन देखते और छूते थे। इस प्रकार उसने उनके मनों को प्राकृतिक से आध्यात्मिक की ओर अग्रसर किया। उसके दृष्टांतों का अर्थ बहुत से लोग तुरंत नहीं समझ पाए, परंतु जैसे जैसे वे दिन प्रतिदिन उन वस्तुओं के संपर्क में आते रहे जिनके साथ उस महान शिक्षक ने आध्यात्मिक सच्चाइयों को जोड़ा था, कुछ ने उन दिव्य सत्य के पाठों को पहचान लिया जिन्हें वो उनके मन पर अंकित करना चाहता था, और ये उसके मिशन की सत्यता के प्रति आश्वस्त हो गए और सुसमाचार को स्वीकार कर परिवर्तित हो गए। सब्बात स्कूल वर्कर, 1 दिसंबर 1909। इस प्रकार प्राकृतिक जगत से आध्यात्मिक राज्य की ओर ले जाते हुए मसीह के दृष्टांत सत्य की उस श्रृंखला की कड़ियां हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से और पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ती है। मसीह के दृष्टांत शिक्षाएं 17।